आप हैं SBS हिंदी के साथ।
ऑस्ट्रेलिया में करीब 1% लोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की पहचान में आते हैं। बताया गया है कि पिछले 4 सालों में यहाँ 40% की बढ़ोतरी हुई है। माँ बाप में अक्सर ये धारणा भी है कि समय के साथ ऑटिज्म के लक्षण खत्म हो जाते हैं, तो ये सोचना गलत है। इसीलिए आवश्यक है कि ऑटिज्म की पहचान समय रहते की जाए। ऑटिज्म एक तरह की न्यूरो बिहेवियरल स्थिति है। इसे हम कैसे पहचाने, क्या समझें इससे, इसके लिए मेलबर्न स्थित डॉक्टर राज खेलन बताते हैं।
देखिए, ऑटिज्म अगर हम बहुत ही बेसिक मोटे तौर पे बात करें
जी,
तो जो डेफिनेटली हमारे क्राइटेरिया जिसकी बेस पे हम डायग्नोसिस करते हैं वो 2 चीजें होती हैं। एक तो बच्चे के सोशल और प्ले स्किल उसकी उम्र से कम हो।
अच्छा।
और दूसरी चीज होती है कि जिसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, एक ही चीज को बार बार करना या एक ही चीज को बार बार बोलना
जी।
तो ये 2 इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं ऑटिज्म के डायग्नोसिस को बनाने के लिए, जो एज पर हम लोग DSM-5 के क्राइटेरिया, जो अमेरिकन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हम लेके चलते हैं, जो वर्ल्ड वाइड माने जाते हैं
जी।
ये 2 इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं।
अच्छा।
तो उसको अगर हम विस्तार में आगे देखें कि सोशल एंड प्ले स्केल में जो बच्चे की, जैसे 3 साल का बच्चा है
जी।
तो 3 साल के बच्चे में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको जो प्रिटेंड और इमेजिनेशन टाइप के प्ले होते हैं, जैसे अगर लड़की है तो उसने, उसके पास सॉफ्ट टॉय है, डॉल है, तो डॉल को फीड करना या उसको अपने जैसे नैपी पहनाना या बेबी की तरह उसको प्रेम में रख के पुश करना, ये सब नॉर्मल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 साल के बच्चे में अच्छा खासा आना चाहिए
जी।
पर अगर वो नहीं आता है तो दैट मीन्स इट्स ए डिले। पर आइसोलेटेड एक अगर सिर्फ सोशल डिले है या प्ले स्किल डिले है, उसमें हम उतना डायग्नोसिस नहीं बनता, पर उसके साथ साथ होना चाहिए कि बच्चे में, जैसे मैंने बोला कि रिपीटेटिव स्टीरियोटाइपिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जो कि एक ही चीज को बार बार करना है, या चाहे तो वो उसके खेल में हो या उसके सोशल एक्टिविटी में हो या उसके बोलने में।
अच्छा।
जैसे बोलने में ये होता है कि जैसे हमने बच्चे के पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है, तो ज्यादा दिन नाम बताने की बजाय वो आपको बताएगा आपका नाम क्या है, आपके पूरे शब्द को रिपीट कर देगा।
अच्छा।
जिसको हम बोलते हैं इको ले लिया, जैसे आप पहाड़ों में जाते हैं आवाज को एक तरह से जोर से बोलते हैं, दूसरी तरह से आपकी इको वापस आ जाती है। तो वो इको ले लिया का मतलब यह है कि बच्चा रिपीट कर रहा है जो आपने बोला, पर उसका उसको मतलब बिल्कुल नहीं पता कि उसका क्या मतलब है
जी।
तो दूसरी चीजें होती हैं, जैसे बच्चे कार जब आपके पास है या खिलौने हैं, उसको खिलौनों को जिस हिसाब से खिलौने बने हैं उसकी खेलने की बजाय वो अपने आप नए तरीके ढूंढते हैं खिलौने के लिए। जैसे कार को उन्होंने, अगर उसके पास 10 कारें हैं तो कारों की लाइन लगा के बैठ गए हैं, या कार को, कार जैसे अगर हम चलाते हैं तो बच्चा 3 साल से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कार को हाथ में पकड़ा तो बूम 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 करके आवाज निकालेगा, तो दैट मींस ट्राइंग टू प्रिटेंड एज ए कार
जी।
या एरोप्लेन है तो हाथ में ऐसा है, हाथ में लिया और उसके हाथ में आवाज इशारा करने की कोशिश करी थी जैसे कि एरोप्लेन चला रहा है। इसमें बच्चे ने कार को लिया, कार को आपकी बॉडी पे चलाने लगा, या कार को उसने उल्टा किया और उसके जो व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं, उसको जो है फ्लिक करके घुमाना शुरू कर दिया और उसको देखते रहे घंटों तक, कई की देर तक, या जमीन पे लेट गए और कार को अपने नजदीक आंखों के बहुत ही पास रखा और आगे पीछे कार को घुमाना शुरू कर दिया, तो उसमें उसने घंटे निकाल दिए। या बच्चों की खेलने की जो चीज है, टॉयज है, उसके ना खेल करके ना खेलने वाली चीजों में ज्यादा बिजी खेलने हो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं अपने खिलौनों में नहीं बिजी होंगे, पर आपके जब किचन में जाके आप बर्तन का काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो उनको निकाल करके उन बर्तनों के साथ खेल रहे हैं, इधर से चम्मच उधर कर पानी एक ग्लास में, दूसरे में तीसरे में, ये उनके खेल चल रहे हैं। सो दिस इज ऑल इनअप्रोप्रिएट। अगेन मैं ये कहूंगा इनअप्रोप्रिएट व्हेन इट हैपन इन कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए डायग्नोसिस बनाने के लिए एक सर्टन क्राइटेरिया होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया थे 2 मोटे मेजर क्राइटेरिया होते हैं, और ये सारे जो है इनके अंदर जो छोटे छोटे बाकी चीजें होती हैं कि एक पैकेज में आती हैं तब हम कहते हैं कि यस इस बच्चे को ऑटिज्म है
जी।
जो स्पीच की पार्ट आती है जिसको हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन जो थिंग है, जो स्पीच डिले है, वो जरूरी नहीं होता कि हर बच्चे में स्पीच डिल हो। इसलिए हम लोग, मैं जो अपनी क्लिनिक में बहुत सारे पेरेंट बच्चे देखता हूँ, तो कुछ पेरेंट कहते हैं कि ये बोल तो लेता है, इसको नर्सिस राइम अगर हम इसको बता दें तो ये पूरी सुना देगा हमको। पर नर्सिस राइम सुनाने से, उस नर्सिस राइम से जितने भी शब्द हैं वो डे टू डे के इंट्रैक्शन में, जैसे हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं उस किसी से, उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करता, इंट्रैक्टिव प्ले में काम नहीं करता वो। तो इसलिए कम्युनिकेशन, स्पीच डिले इज नॉट ए नेसेसरी पार्ट ऑफ ऑटिज्म, बट इट इज यूजली एसोसिएटेड।
अच्छा जी, हम सुनते हैं कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो आपकी आंख में आंख डाल के नहीं देखते, तो क्या ये सही है?
नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल 100% सही चीज है कि आंख में, जिसको हम बोलते हैं कि अवॉइडिंग द आई कॉन्टेक्ट, जो कि जिससे मैं आपको बात कर रहा था कि कम्युनिकेशन, जैसे हम बोलते हैं तो इट्स नॉट ऑलवेज अ वर्बल कम्युनिकेशन, जो आप शब्दों से बोलते हैं उससे ज्यादा हम कभी कभी अपनी बॉडी लैंग्वेज से औरों को समझाते हैं। आपकी आंखें कैसे होती है, आपके एक बॉडी का गेस्चर, आपके हाथ के इशारे, आपकी होल बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स अ लॉट। तो इन बच्चों में जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो बिना लैंग्वेज के जो बॉडी बॉडी के जो गेस्चर्स होते हैं, वो बहुत डिले होते हैं। जैसे आपने सही कहा है कि आपने आंख से आंख मिला के बात की करना, अगर आप उसको बोलोगे भी तो हाई फाई करो तो मुंह आंखें कहीं और होगी और हाथ आपकी तरफ कर देगा हाई फाई करने के लिए
जी।
उसने, उसको आपने कुछ बोला, जैसे किसी भी, अगर आप बच्चे को बोलते हैं तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके फेशियल एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, जब आप गुस्सा हुए हैं, जब आप खुश हैं, जब आप हैप्पी हैं, इन बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन पे ज्यादा नहीं फर्क पड़ता है।
अच्छा, क्या ऐसा भी है कि एक पल ऐसे लगे कि वो बिल्कुल रोने वाला बच्चा हो गया है और दूसरे ही पल एकदम से उसका मन बदल जाएगा?
बिल्कुल ऐसा होता है, जिनको हम, इसको चीज को हम बोलते हैं इमोशनल डिसरेगुलेशन, जो कि इन बच्चों में होता है कि एक पल में तो वो बहुत खुश होंगे और हंसते रहे हैं, और एक ही पल में, जो नेक्स्ट पल में आपको लगेगा कि इसने रोना कर दिया या उसको बहुत ही गुस्सा हो गया। और कोई ट्रिगर, कोई ऐसे की नहीं कि बहुत बड़ी चीज की वजह से गुस्सा होंगे, छोटी छोटी चीज की वजह से हो सकता है, या कभी कभी बिना वजह से भी होता है, अपने आप ताली बजा के हंसने लगते हैं, अपने आप वो जंप करने लगते हैं और फिर जो है उठे और जमीन पे लेट गए, फिर कुछ करने लगे, थोड़ी देर में भी रोने लगे। तो ये इमोशनल डिसरेगुलेशन सब बच्चों में नहीं होता, बट हाँ कुछ बच्चों में जरूर होता है।
अच्छा, कहा जाता है कि ये बहुत अफेक्शनेट नहीं होते, तो क्या ये सही है या ये कोई मिथ है?
नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेजोरिटी बच्चे, सारे नहीं, मेजोरिटी बच्चे ज्यादा अफेक्शनेट नहीं होते हैं। वो रीजन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो बॉडी लैंग्वेज को उनको समझने में दिक्कत होती है, तो इसलिए उनमें वो इमोशंस की डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि धीरे 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 हम लोगों को जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसमें करना पड़ता है, तो इमोशनल की डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है। दूसरी रीजन ये होती है कि जो बच्चों में, कुछ बच्चों में ओपोजिट चीज हम देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनल स्पेसिंग। जैसे हम लोग किसी से भी अगर हम बात करते हैं तो एक अपना पर्सनल स्पेस रख के बात करते हैं, उसके बहुत क्लोज नहीं आते हैं, उसको बार बार हाथ लगा के नहीं बात करते हैं, या किसी को बिना वजह पे आके आप किस नहीं करते हैं
जी।
तो इन बच्चों में ये पर्सनल स्पेसिंग की बहुत कमी होती है। आपके पास बहुत जल्दी आपके पास आ जाएंगे या आपको बिना वजह पे जगह जगह टच करते रहेंगे, तो इस तरह की ये एक एक्सट्रीम एंड और होता है, जिसपे कि कभी कभी पेरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो बहुत अच्छा इमोशन साइन में, ये तो कितनी बार मुझे किस करता है, कडल करता है
जी।
पर दैट इज वो ही चीज आती है कि उसमें हम लोगों को देखना पड़ता है कि ये जो चीज है बच्चे में वो नॉर्मल चीज है या उसकी कम्प्लीटली एबनॉर्मल चीज है। जब और चीजों से मिली होती है तो डेफिनेटली इट्स कम एज एबनॉर्मल
जी। तो बच्चों के व्यवहार के प्रति जागरूक रहकर ये जाना जा सकता है कि क्या बच्चा इस प्रकार के लक्षण से ग्रसित तो नहीं है, ताकि समय रहते ही डॉक्टर की सलाह ली जा सके। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आपके विचार हमें बताएं। SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।